ओम शांति। साकार बाबा द्वारा तराशे गए हीरों की चमक, उन चैतन्य हीरों की चमक कुछ निराली है, तो उन्हीं में से हम आज देखेंगे एक अमूल्य हीरा, बेदाग हीरा। जैसे कि चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो दादी अपने सेवा सब्जेक्ट से यज्ञ में शुरू से ही प्रसिद्ध रही और अपनी सेवा में एक अथॉरिटी रही। जो सेवा उन्होंने इतनी एक्यूरेट की और सबका दिल जीत लिया, छोटों का, बड़ों का, और एक रूहानी पर्सनैलिटी जो सिर्फ अलौकिक इस दुनिया में ही नहीं तो बाहर वालों ने भी दादी को, दादी के प्यार में पड़ गए बिल्कुल। और दादी जैसे कि आज की मुरली है कि गायन और पूजन का आधार, तो उसमें भी बाबा ने कहा कि पूज्य नहीं तो परम पूज्य। बनाने वाला परम है तो बनने वाले भी परम पूज्य होंगे। तो ऐसी हमारी आदि रत्नों में से एक आदि रतन भूरी दादी, जिनका लौकिक नाम था रुक्मिणी। उनकी लौकिक में एक बेटी थी जिसका नाम लीला था, और उनके जो युगल थे, पति थे, उनका नाम जीरा राम जी। तो कराची में जब सभी को साक्षात्कार हो रहे थे और इस सत्संग की ओर आकर्षित हो रहे थे, तो वैसे ही दादी भी टोली के आकर्षण से यज्ञ में आई आई और जैसे कि बाबा की बन गई। तो दादी की एक विशेषता यह रही कि दादी को सितम नहीं झेलने पड़े। बड़े ही युक्ति से दादी ने ससुराल वालों से लेटर प्राप्त किया और फिर बाबा के पास आई। माना दादी को बाद में कुछ विघ्न नहीं आए। तो ससुराल वाले भी पहले तो विरोध किया, लेकिन वो बड़े रॉयल लोग थे, वो जीरा राम जी भी थे, वो व्यापारी थे, तो उन्होंने उनको जाने की अनुमति दी। तो दादी ने भी उस छोटी बच्ची को उनके पास छोड़ के आ गई। तो फिर उन लोगों ने कहा कि अब आप जा ही रही हो, दोबारा वापस आना ही नहीं है, तो ये आपका, ले जाओ। तो उन्होंने जो अपने पियर घर से जो मिला था, जो उनके अलंकार थे सोने के या कुछ सिलाई मशीन आदि था, वो सब लेकर के वो यज्ञ में आई। तो ये विशेषता रही दादी की। फिर माउंट में यहाँ आने के बाद ऑलराउंडर सेवा करती थी दादी, तो उसमें बाबा ने उनको चुना कि रिसीव करने की सेवा, क्योंकि अभी हम आबू रोड से ऊपर आते हैं, आप ऊपर आते हैं तो कितने सारे साधन हैं, उस समय यातायात का कोई भी साधन नहीं था। तो ओम प्रकाश भाई सुनाते हैं मधुबन के, कि जो उस आदि रतन बुक में है, कि उस समय यातायात का कोई साधन नहीं था, तो भी दादी बाहर की बस से, गवर्नमेंट की बस से, कभी बैलगाड़ी से, कभी कभी ट्रक से भी दादी नीचे गई। और सिर्फ एक बार नहीं, बाबा ने कहा कि बच्चे जाओ, फलाना कोई आया है, उनको रिसीव करो। दादी अभी अभी आई है और बाबा ने अभी अभी भेजा, और दादी ने भी हांजी का पार्ट बजाया। बाबा के ऊपर दादी का इतना निश्चय था, सिर्फ ये रिसीव करने की ही सेवा नहीं थी, साथ साथ यज्ञ की जो भी खरीदारी होती थी, नीचे से सब्जी लाना है, फल आदि लाना है, तो ये सब सेवाएं दादी करती थी। तो किसी ने बाबा को कहा कि बाबा, दादी तो ना पढ़ी लिखी नहीं है, इनको तो लोग ठगते होंगे। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बाबा ने कहा वो बच्चा बच्ची को ठगता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो ड्यूटी मैं किसी और को दूं और वो बच्चा बाप को ठगे, ये बात अच्छी नहीं है। तो कितना हिसाब किताब बनेगा बच्चे का। माना देखो, दादी का तो निश्चय बाबा के ऊपर है ही, लेकिन बाबा का दादी के ऊपर का जो निश्चय है वो इससे स्पष्ट होता है। और जिसने वो कंप्लेंट की थी वो तो फिर दोबारा किसी की कंप्लेंट उसने की नहीं होगी, ऐसा उत्तर उसको मिला था। तो ऐसे भगवान के विश्वास पात्र बनी भूरी दादी। उनको भूरी दादी क्यों कहते थे? उनका अलौकिक नाम तो था धीर्य ललिता, दादी का नाम था धीर्य ललिता। हाँ, लेकिन दादी बहुत थी, सुंदर थी, गोरी थी, जैसे हमने संतरी दादी का सुना, बाबा की बहू थी तो बाब हमने सुना कि क्यों उनको संतरी दादी कहा। लेकिन हाँ, तो इनका नाम भूरी, उनको सब प्यार से भूरी दादी कहते थे यज्ञ में। तो बहुत ही गोरी थी और रहती बड़ी टिप टॉप थी। सिंधी माना दूसरा उसका ये है डेफिनेशन की टिप टॉप, बिल्कुल फैशनेबल होते। तो दादी तो बड़ी सिंपल थी सभी, लेकिन ये जो दादी थी ना विशेष श्रृंगार करती थी, पाउडर लगाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना और ऊपर से गॉगल। दादी के अलग अलग गॉगल्स होते थे, धूप वाला अलग, माना हर समय हर स्थान में कौन सा पहनना है, बड़ी फैशनेबल दादी थी। जैसे आज के मुरली में बाबा ने बताया कि अलौकिक श्रृंगार के बारे में बाबा ने बताया कि गायन और पूजन बनने का आधार क्या है। तो गायन बनना, गायन के योग्य बनना माना भाग्य विधाता बाप के बनना, और पूजन योग्य बनने के लिए उसका आधार बाबा ने चार बातें बताई। बाबा ने कहा कि चारों सब्जेक्ट में एक तो चाहिए पवित्रता, फिर सच्चाई, सफाई और स्वच्छता। तो जैसे कि देखो आज 83 की मुरली रिवाइज हो रही है और बिल्कुल बाबा ने सामने दादी को ही देखा होगा। इन चार बातों को अगर हम देखते हैं तो सचमुच ये चारों बातों में दादी बिल्कुल ही आगे थी। प्यूरिटी की ऐसी पर्सनालिटी थी कोई ठग नहीं सकता था। इस जो जब भी मुझे ये मिला कि आपको दादी के बारे में बताना है, मैंने तो दादी को देखा था लेकिन तब तो मैं बहुत छोटा था, 97 में थर्ड स्टैंडर्ड में मैं पढ़ता था, माताजी के साथ सेवा में आया था दिवाली में। तो दादी की ड्यूटी थी उस समय कि सेवाधारियों को तेल साबुन देना, जहाँ शांति स्तंभ पर वो बड़ा स्पेस है उस साइड में लाइन लगा के सब खड़े होते थे 10 बजे 9-10 बजे और लाइन में। तो मैं गया तो दादी बोलती चल भाग माताजी के साथ आना क्योंकि ये गिरा देंगे। दादी बड़ी एक्यूरेट यज्ञ सेवा एक नामी और इकोनॉमी से दादी ने की। तो कितना किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, दादी को पता है एक मास कितना चलेगा उस अनुसार दादी सबको देती थी। तो दादी बहुत ही सुंदर भी थी। ये जो चार बातें थे प्यूरिटी की पर्सनालिटी, तो दादी की ये जो सेवा थी रिसीव करने की, उसके साथ साथ और भी दादी काम करती थी। जैसे किसी का टिकट कैंसिल कराना है, किसी को अभी जाना नहीं है और दिन कुछ दिनों के लिए बाबा ने बोला रुकने के लिए, तो दादी को टिकट भी कैंसिल कराती थी। तो वो जो गवर्नमेंट के ऑफिस थे, रेलवे ऑफिस था, तो वो लोग भी जैसे दादी का इंतजार करते थे। दादी जैसे ही गई तो दादी टोली, तो दादी सबको टोली दे करके खुश करती थी। फिर दादी को रुकना भी पड़ता था कई बार। जिस स्टेशन पर हम आते हैं अभी, तो उस समय तो इतना लाइट की व्यवस्था या इतना वो नहीं था, खुला ही था। तो उस स्टेशन पर दादी ने कई रात में दादी को रुकना भी पड़ा, क्योंकि कई पार्टी रात में आती थी, कभी सुबह आती थी, कभी दोपहर में आती थी, तो उनको रिसीव करने के लिए दादी को वहां रुकना पड़ा। तो वहां पर एक सिंधी फैमिली भी है, जहाँ नीचे संगम भवन है उसके बाजू में सिंधी फैमिली है, उनका नाम जो है चेलाराम, अभी भी वो फल की दुकान है। तो दादी उनके यहाँ भी रुकी, लेकिन घर में उनके यहाँ कभी सोई नहीं, बाहर बरामदे में सोई। उन्होंने बहुत सहयोगी फैमिली थी, लेकिन लेकिन दादी ने सब तरफ संबंध भी ऐसे बना के रखे थे, और दादी ने बिल्कुल प्यूरिटी की अथॉरिटी थी। तो एक प्रकाश भाई सुनाते हैं प्रेस डिपार्टमेंट वाले कि कभी उनको भी दादी के साथ वो सब्जी मार्केट जाने का चांस मिला, तो उन्होंने कहा हम अमृतेला के बाद जाते थे और वो जो बोरिया थी उसमें सब्जी लपेटी हुई थी तो हम खोल के देखते थे कौन सी अच्छी है, फिर वहाँ पे मार्किंग करवाती थी दादी ये बाद में आके हम मिलेंगे, क्योंकि बाद में उसका क्या होता था, सब लोग आने के बाद सब्जियों का रेट जो है वो फिक्स होता था और बाद में वो लोग बेचते थे, तो वो लोग भी कभी वहां दादी को बार्गेनिंग आदि करनी नहीं पड़ी, क्योंकि ये डेली का कस्टमर था और दादी ऐसी पर्सनैलिटी थी कम ज्यादा की भी बात नहीं, जो दादी कहे वो लोग मान देते थे। तो दादी फिर वो खरीदारी करके ऊपर वो तरावटी माल लेके आना, फिर बाबा को रिपोर्ट देना। भले दादी पढ़ी लिखी हुई नहीं, ज्यादा नहीं थी, लेकिन हिसाब में बिल्कुल एक्यूरेट थी। फिर कुछ दिनों के बाद तबीयत के कारण या संख्या बढ़ती गई, फिर और मधुबन निवासियों की संख्या बढ़ती गई, तो फिर दादी मधुबन में यहाँ वो जो तेल साबुन देना वो सेवा की, फिर बाद में डाइनिंग में दादी ने भोजन परोसने की सेवा की। आज भी मधुबन के डाइनिंग में वो जो लकड़ी की चेयर आप देख रहे हैं उसमें दादी बैठती थी। और दादी की एक विशेषता थी कि अगर कोई स्पेशल चीज बनी है, मानो गुरुवार का भोग है, जिलेबी बनी है, तो किसी किसी को पसंद होती है तो किसी को और एक चाहिए होती है, लेकिन दादी को पूरा होता था कि आज कितने लोग हैं, सबको मिलना चाहिए। तो सभी ने बताया, सुशील भाई ने भी बताया कि अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो युक्ति रचनी पड़ती थी, दादी देंगी तो नहीं, बोलेंगी चलो भाई और भी बाबा के बच्चे हैं, तो ये करते थे कि हाथ धुलाई करके फिर नई थाली लेके लाइन में लग जाते चलो दादी को तो कोई ठग नहीं सकता था, है तो सभी बाबा के बच्चे, लेकिन बिल्कुल ही लॉ और लॉ का बैलेंस रखते हुए दादी जी ने यज्ञ की सेवाएं संभाली। और डाइनिंग के जो गोपी भाई है वो सुनाते हैं कि मैं तो छोटा था, 2 साल उनको मौका मिला दादी के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना छोटा होने के बाद भी दादी कुछ बताती थी सेवा, कमरे में भी जाता था, तो दादी हर बात में काम पूरा होने के बाद थैंक यू जरूर बोलती थी, बड़ी नम्र थी। मना हर इतनी बड़ी दादी है, छोटा है बड़ा है कोई भी है, इस कारण से ना सबका दिल दादी ने जीत लिया था, तो कोई उनको ना भी नहीं कर सकता था, दादी की बात टाल भी नहीं सकता था। फिर दादी को किसी ने कुछ कहा या किसी से कुछ गलती हुई तो दादी कभी गुस्सा भी नहीं करते थे, तो विशेष जब भी दादी का नाम आता है तो साथ में सभी कहते हैं कि दिव्या भाई, कि जिन्होंने अंतिम समय में दादी की बड़ी प्यार से सेवा की। तो वो उनके कुछ अनुभव सुनाते हैं कि एक बार दादी बहुत स्वच्छता प्रिय थी ना, तो सप्ताह में एक बार बिस्तर उनको सफाई करना ही है, गद्दा धूप में सुखाना है, बेडशीट का धुलाई होना है, सप्ताह में दादी वो सब साफ करवाती थी करती थी। तो एक बार दादी ने उनको कहा कि देखो रजाई को ना धूप में डालो और कवर को बाल्टी में भिगो दो, तो वो तो नए नए थे उनको पता नहीं था, उन्होंने रजाई को बाल्टी में भिगो दिया और कवर को धूप में सुखा दिया। फिर वो किसी ने देख लिया, फिर कहा कि आज तो तुम्हारी खैर नहीं, अभी संभल के जाना उधर। तो वो डरते डरते डाइनिंग की तरफ बढ़े, तो दादी बिल्कुल उन्होंने कहा जैसे बच्चा होता है, बिल्कुल बच्चे की तरह माँ और बच्चे का जैसे कन्वर्सेशन होता है, तो दादी कहती भाई तुमने क्या किया, भूल गए क्या, अब इतने ठंड में मैं कैसे सोऊंगी, मना इतना प्यार से दादी ने उनको मना आप डांट भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं पिघल गया वहीं पे। फिर मैंने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी कि दादी को मुझे कुछ कहना पड़े, डांटना पड़े। तो दादी अपने इस नम्रता से, अपने प्यार भरे उस मातृत्व भाव से छोटे बड़ों को, साथियों को, सबको ऐसा दिल जीत लेती थी कि सामने वाला घायल हो जाता। तो वो खुद बताते हैं कि अंतिम समय में तो दादी को दिखता भी कम था, तो भी जो सेवाएं उन्होंने की, कि वो कहते हैं आज भी मुझे आश्चर्य लगता है कि कैसे किया मैंने ये सब। दादी की जो सेवाएं थी पर्सनल, वो दादी के साथ ही रहते थे वार्ड में भी। उस समय तो दादी फोन नहीं चला सकती थी, तो लकड़ी थी दादी के पास, ऐसे खटिया पे खटखट करती थी। फिर आने जाने वाले पूछते थे क्या चाहिए दादी, तो हाँ दिव्या को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो बाबा ने मेरे से सेवाएं करवाई, तो जरूर दादी ने भी यज्ञ सेवा उस भाव से की थी जिसका रिटर्न बाबा ने उनको दिया। फिर टेलरिंग डिपार्टमेंट के भरत भाई, उन्होंने सुनाया कि जब रथ यात्रा थी 12 ज्योतिर्लिंग की, जो रथ यात्राएं निकली थी पूरे भारत भर से, तो वो माउंट में पहुंची थी और उसको पोलो ग्राउंड में आबू निवासियों के लिए रखा था। तो सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं भी दादी के साथ था और हम जैसे ही वहां गए तो जो आबू निवासी दादी को जानने वाले थे, तो दादी को देख के इतना खुश हो गए, वो रथ यात्रा छोड़ के सब दादी के दर्शन के लिए लाइन लग गई। माना ऐसे हमारी परम पूज्य दादी थी कि जो सिर्फ यज्ञ निवासी ही नहीं, तो जो बाहर के भी लोग थे तो उनके सामने एक आदर्श थी, पूजनीय थी। तो डॉक्टर प्रीति बहन जी सुनाती है कि अंतिम समय में दादी को दिखता तो कम था, तो उनको ये था कि मेरा गॉगल कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, मुझे अभी ग्लोबल जाना है, मेरा चश्मा क्यों नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हाथ में जो आया उठाया और दे दिया, तो वो गॉगल चश्मा था, ऐसा था कि उसमें लेंस ही नहीं थी, सिर्फ फ्रेम थी। दादी को लगा दिया, दादी को पूछा दादी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर वो दादी को ग्लोबल ले गए, ग्लोबल के घुमा के भी लेके आए। फिर दादी को यहाँ कुछ खुजली हुआ, दादी ने ऐसी उंगली लगाई और फिर ऐसे दादी को पता चला रही है तो ग्लास है नहीं, तो दादी फिर उसको डांटने लगी, देखो तुमने मुझे नकली चश्मा दिया। मना इतना बच्चे जैसा हो गई थी दादी अंतिम समय। लेकिन दादी की जो स्वच्छता थी, सभी मधुबन वाले सुनाते हैं कि बिल्कुल टिप टॉप, कि बाबा ने हमें तो कहा कि आपको अलग अलग संबंधों से कैसे बाबा को याद करना है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप था उनका कि मैं उस शिव साजन की सजनी हूँ। जब हॉस्पिटल में दादी को ले गए थे तो दादी को पहली बार वहां नाम लिखवाना होता है ना, तो पूछा दादी पति का नाम क्या है, बोली पतिवती कोई नहीं, शिव बाबा पति है मेरा। तो उनको वो लौकिक की दुनिया माना भूल गए थे वो पूरा। तो उनका ये था स्वमान कि मैं उस शिव साजन की सजनी हूँ और वो मुझे मिलने आएगा, तो उस समय मुझे कैसा टिप टॉप होना चाहिए। दिन में ही नहीं तो रात में सोने के पूर्व दादी पूरा नहा के, पाउडर लगा के, काजल लगा के, और कपड़ा भले हमारा सिंपल ही है लेकिन स्टार्च किया हुआ, खुद ने प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन के, गुलाब का फूल लेके बाबा को कमरे में गुड नाइट करके दादी फिर सोते थे। माना इतनी स्वच्छता थी और इतना कि मैं शिव साजन की सजनी हूँ, शिव बाबा मुझे मिलने आने वाला है, तो मुझे बिल्कुल एक्यूरेट वो कपड़े पर दाग नहीं, तो दादी का कहना था कि ये मेरे आत्मा के ऊपर दाग है, इतना वो स्वच्छता थी, सफाई थी। फिर दादी जो है अपनी सेवा में एक्यूरेट भी थी। दादी को याद रहता था कि आज कौन नहीं आया है, सुबह का भोग है, आज किसने नहीं लिया है। अगर वो दोपहर में नहीं मिले तो रात को अगर वो भोजन पे आता है तो दादी पूछती थी सुबह नाश्ता नहीं किया, भोजन नहीं किया, तो उसको वो निकाल के देती थी। तो इससे सिर्फ साकार बाबा के साथ ही नहीं लेकिन बड़ी दादी के साथ भी उनका यही रिगार्ड रिस्पेक्ट रहा और दादी भी उनको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट देती थी। दादी को अगर किसी ने कुछ लिफाफा पकड़ा दिया, अभी दादी है तो यज्ञ सेवा के लिए कोई कुछ दे देता है, तो वो एक मिनट भी नहीं गवाती थी, तुरंत बुलाती थी। वो दिव्या बहन ने सुनाया कि एक मुझे बुलाती थी, बोलती थी ये दादी के पास लेके आओ, यीशु दादी के पास लेके आओ, और हाँ मेरे लिए कुछ लेके आना, मना सेंडिंग रिपोर्ट डबल क्लिक पहुंच गया। तो ऐसी दादी थे। फिर दादी बाबा से जब मिलते थे स्टेज पर, दादी ने कभी माइक पर भाषण तो नहीं किया लेकिन बाबा से मिलने जब आती थी तो विशेष चार बातों का वो ख्याल रखती थी। एक तो गुलदस्ता, दूसरा बाबा के लिए नई डिब्बी में कुछ टोली बनवा के, टोली डिपार्टमेंट से टोली बनवा के नए स्टील के डब्बे में वो लाती थी, और फिर दूसरा ड्राई फ्रूट की टोली होती थी, और चौथा बाबा के लिए खर्ची लिफाफा होता था। लेना उधर से ही है, अकाउंट डिपार्टमेंट से, सागर में ही लेना है और सागर को ही देना है। लेकिन वो जो रीति है, वो जो रसम है कि हम किससे मिल रहे हैं, भगवान से मिल रहे, उनकी मुख द्वारा कुछ मुलाकात नहीं होती थी, ओम शांति भी नहीं, लेकिन उस शिव साजन और शिव सजनी की मुलाकात नैनों से होती थी। वो खुदा भी एक बार मुड़ के उसको देख लेता था, उसके इतनी ये श्रृंगारी हुई दिव्य गुणों से, सिर्फ स्थूल रूप में ही नहीं तो दिव्य गुणों से श्रृंगारी हुई दादी को वो स्वयं भगवान की भी मुड़ के देखता था एक बारी। तो फिर बाबा शेक हैंड भी करते थे दादी से, ऐसी प्यारी भूरी दादी जिनको सब याद करते हैं, जिनकी सेवा है, जिन्होंने दधीची ऋषि मिसल यज्ञ में हड्डियां दी। और भी कुछ आपको याद आता है? 1980 सीजन का जो फल है वो भी दादी लाती थी। तो दादी इतनी उम्र में भी जैसे कि यूथ थी, 1985 में पैदल यात्रा हुई थी तो उसका आरंभ यहाँ से हुआ, तो दादी खुद झंडा लेके हाथ में सबसे आगे पैदल गई यहाँ से शांति। दादी गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने बाबा के कमरे में तो जाती ही थी, लेकिन विशेष रिपोर्टिंग भी सेवा के पहले और सेवा के बाद में भी बाबा के कमरे में जाती थी। अच्छा, ओम शांति।